भक्त वृंद हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Taram, Krishna Balaram, Jaya Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundarade. Jaya Jaya Prabhupad, 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 Jaya Jaya Prabhupad. Jaya Jaya Prabhupad, 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 Jaya Srila Prabhupad. Anitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Jai Vishupad Paramahansa Parirvaj Gacharya Ashto Tarasishma Jivayin Ves Abhay Charnarvinda Bhakti Vedanta Samishta Prabhupada Ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथा श्रीमद भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 21वां अध्याय श्लोक संख्या 40 उमा लभेता नतिवेलम आत्मनः પ્રસીદતોત્યંતશમં સ્વતસ્વયં યન્નિત્યસંબંધનિષેવયા તતઃ પરમ કિમત્રાસ્તિ મુખમ હવિર્ભુજમ પુમાલભેતા નતિવેલમાત્મનઃ પ્રસીદતોત્યંતશમં સ્વતઃ સ્વયં યન્નિત્યસંબંધનિષેવયા તતઃ પરમ કિમ અત્રાસ્તિ મુખમ હવિર્ભુજાં પુમાં લભેતા નતિવેલમાત્મનઃ પ્રસીદતોત્યંતશમં સ્વતઃ સ્વયં યન્નિત્યસંબંધનિષેવયા તતઃ પરમ કિમત્રાસ્તિ મુખમ હવિર્ભુજાં પુમાં લભેતા નતિવેલમાત્મનઃ પરમ કિમત્રાસ્તિ મુખમ હવિર્ભુજમ પુમાં લભેતા નતિવેલમાત્મનઃ પરમ કિમત્રાસ્તિ મુખમ હવિર્ભુજાં માતાજી ઉમા લભેતા નિતિવેલમાત્મનઃ પ્રસીદતો અત્યં નિત્ય સંબંધ નિવેશવા તતઃ પરમ કિમત્રાસ્તિ મુખમ હવિર્ભુજમ પુમાન પુરુષ લભેત પ્રાપ્ત કર સકતા હૈ અનતિવેલમ અવિલંબ આત્મનઃ અપની આત્મા કે પ્રસીદતઃ પ્રસન્ન હોને પર અત્યંત અત્યધિક શમમ શાંતિ સ્વતઃ અપને આપ સ્વયં સ્વયં યત જિસકા નિત્ય નિયમિત સંબંધ સંબંધ નિષેવયા સેવા કે બલ પર તતઃ તત્પશ્ચાત પરમ શ્રેષ્ઠ કિમ ક્યા અત્ર યહાં અસ્તિ હે મુખમ મુખ હવિહિ ઘી ભુજામ પીને વાલે અનુવાદ તથા તાત્પર્ય શ્લ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્લ પ્રભુપાદ કી અનુવાદ બ્રાહ્મણો તથા વૈષ્ણવો કી નિયમિત સેવા કરને સે સંતુષ્ટ સોરી ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की नियमित सेवा करने से मनुष्य के हृदय का मल दूर होता है और इस प्रकार परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है और वह मनुष्य और वह संतुष्ट हो जाता है। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकाम कर्म नहीं, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं जिनके लिए उनके यज्ञों की संतुष्टि की जाती है। कृपया दोहराइए अनुवाद। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की नियमित सेवा करने से मनुष्य के हृदय का मल दूर होता है और इस प्रकार परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है और वह संतुष्ट हो जाता है। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकाम कर्म नहीं, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं जिनके लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की जाती है। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है प्रसादो सर्व दुखानाम हानि रस्यो पजायते। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है, 65वां श्लोक। जब तक आत्मतुष्टि नहीं होती इस संसार के दुखों से छुटकारा नहीं मिल पाता, अतः आत्मतुष्टि की पूर्णता प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा करना अनिवार्य है। इसीलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेर चरण से भी भक्त सने वास, जन्म जन्म होए एई अभिलाष। मैं जन्म जन्मांतर आचार्यों की चरण कमलों की सेवा करना तथा भक्तों की संगति में रहना चाहता हूँ। भक्तों की संगति में रहकर तथा आचार्यों के आदेशों के पालन से ही आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखा जा सकता है। इस कलयुग में ब्राह्मण कुल की सेवा कर पाना अत्यंत दुष्कर है। वराह पुराण के अनुसार सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि कलयुग का लाभ उठाकर असुरों ने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है। राक्षसा कलिम आश्रित्य जायते ब्रह्म योनिषु, वराह पुराण। दूसरे शब्दों में इस युग में शास्त्रों तथा लोगों की अविद्या का लाभ उठाते हुए तथा कथित ब्राह्मण तथा गोस्वामी अपने को वंशानुगत अधिकार से ब्राह्मण तथा वैष्णव बताते हैं। ऐसे ब्राह्मण कुलों की सेवा करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु तथा उसके संगियों का आश्रय ग्रहण करें और उनकी सेवा करें, क्योंकि इससे नव दीक्षित को परम संतोष प्राप्त हो सकेगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवद गीता के श्लोक दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, व्यवसायित्मिका बुद्धिर एकह कुरु नंदना की व्याख्या में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा बताए गए भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त हो सकता है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। अत्यंत शमम अनति वेलम अविलंब शब्द का विशिष्ट प्रयोग सार्थक है, क्योंकि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा करने से ही मुक्ति मिल सकती है। कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नारद मुनि स्वयं है। अपने पूर्व जन्म से वे दासी के पुत्र थे, किंतु उन्हें ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, जिससे अगले जन्म में वे न केवल मुक्त हो सके वरन संपूर्ण वैष्णव शिष्य परंपरा में वे परम गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो सके। अतः वैदिक विधि में यह प्रथा है कि किसी अनुष्ठान को संपन्न करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितां येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वांशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तुम बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे हैं। किसका प्रसंग है? पृथु महाराज जी का। और इस अध्याय में महाराज पृथु उपदेश कर रहे हैं। किनको उपदेश कर रहे हैं? वो अपनी प्रजा को। इतना सुंदर उपदेश कर रहे हैं पृथु महाराज। आप तो सुन रहे होंगे कई दिनों से। इसके पहले अध्याय में क्या हुआ कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। पृथु महाराज ने जो अश्व मेध यज्ञ किए तो 100 तो नहीं पूरा कर पाए, 99 के बाद, क्योंकि इंद्र नहीं चाहते थे वो पूरा करे। तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें क्या जरूरत है? जब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ तो 100 यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु को संतुष्ट करना। समसिधिर हरितोषणम। तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए तो पृथु महाराज को क्या आवश्यकता ही नहीं थी कि वो 100 यज्ञ पूरा करे। और जैसा आप सुने हैं कि इंद्र भी उनसे क्षमा याचना किए। तो इस अध्याय में पृथु महाराज अपने प्रजा को उपदेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर उपदेश है। सबसे पहले वो कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का आप सबको पालन करना चाहिए, महाराज पृथु समझा रहे अपने प्रजा को। और फिर कहते हैं कि आप वर्णाश्रम धर्म पालन करेंगे तो इसका फल कौन देगा? इसका फल देंगे भगवान। एक परम पुरुषोत्तम भगवान है जो कि इस संसार के परम नियंत्रण करने वाले हैं। तो सबको शिक्षा दे रहे हैं, जैसे हम प्रीचिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भगवान है, तो वैसे पृथु महाराज अपनी प्रजा को समझा रहे हैं कि कैसे भगवान का अस्तित्व है, भगवान बिना संसार नहीं चल सकता। फिर उसके बाद वो समझाते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अलावा हमें डायरेक्ट भी भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि हम समझाते हैं, आप चाहे किसी वर्ण में भी हो, आप कोई भी कार्य करें, क्या भाव होना चाहिए? भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा हूं। तो इस प्रकार पृथु महाराज उनको समझाते हैं कि आप सब भगवान की भक्ति कीजिए। और इस श्लोक में बताते हैं कि भक्ति कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि भक्ति करने में सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, वह है वैष्णव सेवा, है ब्राह्मण सेवा, जो इस श्लोक में पृथु महाराज कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण तथा वैष्णव की नियमित सेवा करना ही करने से ही मनुष्य का हृदय का मल दूर हो सकता है और वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता है। और कहते हैं ये जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है, प्रभुपाद जी समझाते हैं इसमें कि बिना किसी विलंब के, ये इसमें समय नहीं लगता, अगर हम किसी परम वैष्णव की सेवा करते हैं तो बिना विलंब के हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है और हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये शब्द है अनति वेलम, यानी अविलंब, बिना विलंब के, बहुत शीघ्र। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में किसका उदाहरण दे रहे हैं? नारद मुनि का। अभी चतुर्मास चल रहा है तो नारद मुनि चतुर्मास के समय ही किसकी सेवा किए? भक्ति विदान जो स्वामी, जो भक्त लोग थे, वो एक स्थान में रुक जाते हैं चतुर्मास में, कहीं इधर उधर भ्रमण नहीं करते क्योंकि बारिश का समय रहता है। तो उस समय उनकी जो माता थी, नारद मुनि की पिछले जन्म में माता, वो क्या थी? एक दासी थी। तो वो वहाँ पे सेवा करती थी, घर साफ करना, बर्तन धोना इत्यादि, जो भी दासी सेवा करती हैं। तो नारद मुनि छोटे से बालक थे उस समय, उनके साथ उनके घर में जाते थे और जो महान वैष्णव वहाँ पे थे उनका संग करते थे नारद मुनि, और उनसे कृष्ण कथा सुनते थे और उनका उचिष्ट भी पान करते थे। तो इस प्रकार बहुत ही जल्दी, सोचिए केवल चार महीने में नारद मुनि पूर्ण रूप से इतने महान वैष्णव भक्त बन गए। और फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद आप सब कहानी जानते हैं कि उनके माता का देहांत हो जाता है और फिर नारद मुनि निकल पड़ते हैं, चारों तरफ भ्रमण करते हैं और वो आप सब जानते हैं कैसे समाधि में बैठे और भगवान उनको स्वयं आके उनको दर्शन देते हैं और उनको कहते हैं कि हे नारद मुनि, इस जन्म में मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे महान भक्त नारद मुनि के रूप में प्रसिद्ध होगे। तो ये बहुत बहुत ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण है नारद मुनि का, और इसलिए भागवतम के स्टार्टिंग में ही ये नारद मुनि अपनी कहानी स्वयं बता रहे हैं। अधिकतर क्या वैष्णव अपनी कहानी नहीं बताना चाहते, लेकिन नारद मुनि क्यों बता रहे हैं? केवल इसलिए वो व्यासदेव को बताना चाहते हैं कि भक्तों की सेवा करने का क्या महत्व है। तो अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि मैं जो आज नारद मुनि बना वो किस लिए बना? केवल वैष्णव की सेवा करने के द्वारा, और कोई कारण नहीं है कोई भक्त बनने का। केवल एकमात्र कारण क्या है? भक्तों की सेवा। जो भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, क्या? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूल। तो जो प्रेम, जो लता है, उसका मूल क्या है? भक्तों की सेवा। और जैसे महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी को, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो जो भक्ति लता का जो बीज है वो स्वयं कृष्ण नहीं देते, वो कौन देते हैं? कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु वैष्णव देते हैं। और प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण शब्द इस श्लोक में प्रयोग किया गया है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो जन्म के अनुसार जो ब्राह्मण है उनकी सेवा नहीं, उनके सेवा से कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि कहा गया है कलयुग में ब्राह्मण कुल में कौन जन्म लेते हैं? असुर। वराह पुराण का ये श्लोक है कि राक्षस लोग कलयुग में ब्राह्मण के परिवार में जन्मे। तो और वास्तविक बात है, आप देखिए आज की दुनिया में जो तथाकथित ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेते हैं वो सबसे ज्यादा पाप करते हैं, मांस भक्षण करना, हर तरह का बुरा काम करते हैं, ब्राह्मण परिवार से जन्म ज्यादा बुरा काम करते हैं, ये वास्तविक बात है आजकल। तो इसलिए उन ब्राह्मणों का कोई मतलब नहीं है, हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, वैष्णवी असली ब्राह्मण है। और विशेष करके प्रभुपाद जी कहते हैं हमें गुरु की सेवा करना चाहिए क्योंकि वही परम वैष्णव है। तो जैसा कि यहाँ प्रभुपाद जी नारद मुनि का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक और विशेष उदाहरण किसका है? श्री प्रभुपाद जी स्वयं, जो आज इतने बड़ी इस्कॉन संस्था है, इतने विदेशी भक्त हैं, वो कैसे भक्त बने? केवल श्री प्रभुपाद जी की सेवा करने मात्र से। नारद मुनि तो कम से कम भारत में उनका जन्म हुआ था, हाँ, दासी के पुत्र थे, लेकिन म्लेच्छ यवन जो इतने बुरे परिवार से थे, बिल्कुल संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं था, वैसे लोग भी प्रभुपाद जी का संग करके भक्त बन गए। और बहुत जल्दी जो शब्द इसमें प्रयोग किया गया अनित वेलम, ये वास्तव में प्रभुपाद जी की जो जीवन में उसमें देख सकते हैं कि उनके संग करने मात्र से बहुत जल्दी कैसे लोगों का हृदय में परिवर्तन आया। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कभी प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, आप देखेंगे किस तरह लोग प्रभुपाद जी के संपर्क में आके भक्त बने। ऐसा कहा जो हम श्लोक सुनते हैं ना कि साधु संग सर्वसिद्धि सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो। तो इसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण है ये हमें प्रभुपाद जी के जीवन में मिलता है। ऐसा मैंने कहानी सुना है कि एक बार एक एयर होस्टेस थी, जो होता है ना, जो हवाई जहाज में जो वो करते हैं, लोगों को खाना देते हैं, पानी देते हैं। तो ऐसे एक एयर हॉस्टेस थी और प्रभुपाद जी वहाँ पे थे, तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी आप कुछ लेंगे क्या? तो प्रभुपाद जी बोले, नहीं हम तो कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा कुछ फल है तो ला सकते हैं। तो एयर हॉस्टेस गई और तुरंत बहुत अच्छे अच्छे फल काट के प्रभुपाद जी के लेके आई। फिर प्रभुपाद जी कुछ अपने साथ चुड़वा लेके गए थे, तो एयर हॉस्टेस ने प्रभुपाद जी के चुड़वा से ही थोड़ा छुड़ा खुद भी पा लिया। सोचिए प्रभुपाद जी का महाप्रसाद। बस प्रभुपाद जी भी चलो अच्छी, बस उतना ही था, उतना ही संग मिला। कितना संग? 2-3 घंटे का फ्लाइट होगा। लेकिन बाद में मैंने ऐसे भक्तों से सुना है कि कोई साउथ अमेरिका में किसी बहुत कोने में अंदर की जगह में एक कोई भक्त प्रचार कर रहे थे, तो किसी के घर में गए और देखे, अरे यहाँ तो प्रभुपाद जी की किताबें ऑलरेडी हैं, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रही है एक महिला, और उनसे बात किए तो महिला ने कहा कि मैं एक एयर हॉस्टेस थी और प्रभुपाद जी से हवाई जहाज में कुछ क्षणों के लिए प्रभुपाद से मिली थी। तो ये है प्रत्यक्ष उदाहरण। ऐसे कई उदाहरण है कि थोड़े समय भी प्रभुपाद जी से मिलने के बाद कैसे लोग भक्त बन गए। और 2 दिन पुरानी बात ही है, आप सब जानते हैं 13 अगस्त हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। क्यों? क्योंकि उसी दिन 13 अगस्त 1965 में श्री प्रभुपाद जी कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, जलदूत में। तो मेरे थोड़ा मैं आप लोगों से थोड़ा उसी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, प्रभुपाद लीलामृत से। बहुत ही आवश्यक ग्रंथ है हम सबके लिए, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभुपाद जी के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे तो इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है श्रीमद् भागवतम में और प्रभुपाद जी की जो लीलामृत है। कि प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष भागवत है, जो कि भागवतम में जो लिखा है उसको इस आधुनिक जगत में उसको सच करके दिखाए। जिसे भागवतम में हम पढ़ते हैं, तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्जन्म भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किं मुताशिष। यही श्लोक कि कैसे कि एक क्षण के लिए भी अगर हम किसी महाभागवत का संग करते हैं तो उसके समान और कोई आशीर्वाद नहीं है संसार में। स्वर्ग जाना या मोक्ष की प्राप्त करना, ये सब इसके सामने तुच्छ है। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रभुपाद जी स्वयं अपने जीवन में दिए। प्रभुपाद जी के संघ के द्वारा उन्होंने कितने जीवात्माओं का उद्धार किया। हम सब आज यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? श्रील प्रभुपाद जी के लिए, उनकी कृपा के द्वारा। वो जो 13 अगस्त को प्रभुपाद जी अमेरिका गए जलदूत में, तो थोड़ा सा उसी के बारे में मैं सोचा था आप सबके बारे में चर्चा करूं। आप सब सुनना चाहते हैं प्रभुपाद जी के बारे में? तो वैसे तो बहुत विस्तार में हम चर्चा कर सकते हैं, मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि जैसा आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी जब पहली बार मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से, उनके गुरु से, कौन से साल में मिले थे प्रभुपाद जी? 1922 में कलकत्ता में। तो देखते ही श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उन्हें क्या उपदेश दिया था कि जाओ और पाश्चात्य देश में चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रचार करो, आप शिक्षित नवयुवक हो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। लेकिन उस समय श्रील प्रभुपाद जी क्या थे? स्वाधीनता संग्रामी। आज स्वाधीनता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, भारत को पहले स्वाधीन होना चाहिए। तो भक्ति सिंह ठाकुर ने समझाया इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आज किसका शासन है, कल किसका शासन है, ये सब क्या है? नश्वर है। वास्तविक अर्जेंसी क्या है? जो महत्वपूर्ण चीज वो क्या है कि हम भगवान का संदेश प्रचार करें, यही वास्तविक इंडिपेंडेंस है या स्वाधीनता है। तो प्रभुपाद जी उस समय अभयचरण थे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं पहली बार वो किससे परास्त हुए, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा एक लीडर थे, नेता थे, अपने कॉलेज में भी वो नेता थे और हमेशा लोग उनकी बात सुनते थे, कभी प्रभुपाद जी परास्त किससे हार नहीं स्वीकार करते थे। लेकिन पहली बार प्रभुपाद जी कहते हैं मैं किससे हार स्वीकार किया और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने विद्वान व्यक्ति के हाथ में चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। क्योंकि प्रभुपाद जी जन्म से तो वैष्णव थे, उनके पिता गौर मोहन देव महान वैष्णव थे, राधा कृष्ण की पूजा भी करते थे, लेकिन जब युवा हुए, कॉलेज में गए, तो थोड़ा स्वाधीनता संग्राम और इधर उधर थोड़ा उनका विचार घूमने लगा। तो लेकिन फिर भक्ति सिंह ठाकुर से मिलने के बाद प्रभुपाद जी समझे इसको। खैर, लेकिन उस समय प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, उनका बिजनेस था फार्मास्यूटिकल बिजनेस, दवाई के बिजनेस में प्रभुपाद जी काम करते थे। लेकिन जब पहली बार मिले तब से उनके हृदय में एक बहुत अच्छा याद भक्ति सिंह ठाकुर का रह गया। और फिर प्रभुपाद जी इलाहाबाद आए, इलाहाबाद में प्रयाग फार्मेसी। आज भी मैं एक बार इलाहाबाद गया था तो एक भक्त ने दिखाया वो स्थान, वो दुकान जहाँ पे प्रभुपाद जी अपनी दुकान खोले थे, प्रयाग फार्मेसी नाम था। तो उस समय वहाँ पे गौड़िया मठ के कुछ वैष्णव वहाँ पे एक सेंटर खोलना चाहते थे, तो सबके साथ जैसे होता है ना कोई सेंटर खोलते हैं तो सब बिजनेसमैन लोग से मिलते हैं, उनसे दान लेते हैं, तो वैष्णव लोग लोगों से सुनो कि अभय बाबू नाम के बहुत अच्छे भक्त व्यक्ति हैं, उनसे मिलिए। तो जो गौड़िया वैष्णव जो वहाँ से भक्त थे वो सब प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए उनसे मिलके, और फिर उन्होंने कहा अपने गुरु भक्तिशरण ठाकुर के बारे में, तो प्रभुपाद जी और भी प्रसन्न हुए, अरे मैं तो उनसे मिला हूँ 1922 में। तो प्रभुपाद जी पूरे जोर शोर के साथ उत्साह के साथ उनके साथ प्रचार कार्य में लग गए, और इलाहाबाद में जो मठ की स्थापना में प्रभुपाद जी का बहुत अहम योगदान रहा। और फिर 1932 में श्री भक्तिशरण ठाकुर ब्रजमंडल की परिक्रमा निकाले, बहुत विशाल रूप में वो ब्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ किए, बहुत बड़ा ग्रुप लेके आए थे और अलग अलग स्थान में लोग जा रहे थे। और आप सुने होंगे कि उस समय जो प्रभुपाद जी जो श्लोक में कहते हैं ना, कई लोग हैं जो सोचते हैं कि जन्म के हिसाब से हम वैष्णव बनते हैं या ब्राह्मण बनते हैं, और प्रभुपाद जी और भक्ति सिद्धांत ठाकुर इसके खिलाफ थे, वो एक आंदोलन लाए समाज में कि नहीं, वैष्णव या ब्राह्मण हम जन्म के हिसाब से नहीं होते। तो इसीलिए जो वृंदावन के गोस्वामी थे वो उनके बहुत खिलाफ थे, तो सब गोस्वामी मंदिर बंद कर दिए, उनको दर्शन तक नहीं करने दिए भक्ति सरस्वती ठाकुर और उनके शिष्यों को, और कई लोग पत्थर भी फेंके उन पे, लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी परिक्रमा जारी रखी और पूरी ब्रजमंडल की परिक्रमा उन्होंने किए। और बहुत बड़ा ये पहली बार इतने, आजकल तो कई ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, लेकिन जो पहला महान ब्रजमंडल परिक्रमा की जो शुरुआत थी वो किसने की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1932 में। और उसी समय वो एक, जैसे होता है ना हर रात एक एक जगह भक्त लोग रुकते हैं, तो एक दिन वो कोसी में उनका कैंप लगा था, कोसी में। तो श्रील प्रभुपाद जी उस समय कहाँ रहते थे, इलाहाबाद में, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं जाके मिलूं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो वो एक दिन के लिए केवल इलाहाबाद से वृंदावन आए, मथुरा स्टेशन से कोसी गए, और कोसी में शाम के समय वो प्रवेश किए, और उस समय एक अनाउंसमेंट हुआ, शायद भक्ति श्रीधर महाराज जो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया, क्या अनाउंसमेंट, कि अभी कुछ भक्त लोग जाएंगे दर्शन करने शेष साई विष्णु के पास, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी अपनी प्रवचन करेंगे, तो आपको जहां भी इच्छा है आप वहां जा सकते हैं। तो अधिकतर भक्त कहां चल गए, दर्शन करने, हम सब रहते हैं ना धाम में आएंगे दर्शन करेंगे दर्शन करेंगे, तो सारे लोग वहां चल गए, केवल 10-15 लोग बचे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रवचन को सुनने के लिए, और उनमें से एक कौन थे, अभय। तो श्रील भक्ति ठाकुर अपने प्रवचन प्रारंभ किए, और आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी के प्रवचन तो थोड़े सरल रहते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत बड़े विद्वान थे, उनका प्रवचन बहुत ही गंभीर और सिद्धांतमय प्रवचन होता था उनका। तो सब बैठे थे, प्रभुपाद जी वहां बैठे थे, उनको कुछ समझ में आ रहा था कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, लेकिन वो ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, और धीरे धीरे जैसा होता है ना कोई लंबी क्लास चलती है तो भक्त धीरे धीरे उठ के चले जाते हैं, तो वैसे ही धीरे धीरे जो 15 लोग थे उसमें से भी धीरे धीरे सब चले गए, हमें ये सेवा है हमें ये करना है वो करना है, ऐसे करके केवल 4-5 लोग बच गए, लेकिन उनमें से कौन रह गए, अभय, वो वहां बैठे रहे, और कुछ 2-4 सन्यासी थे। तो इस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रवचन उनका खत्म हुआ, फिर अगले दिन अभय वापस इलाहाबाद आ गए और भक्ति ठाकुर भी चले गए वहां से। फिर उसके ठीक 1 साल के बाद इलाहाबाद में भक्तों को एक जमीन मिला, और वहां पे वो नई मठ की स्थापना करना चाहते थे, और उसकी भूमि पूजन के लिए कौन आए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे आए। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए, और उस समय जो वहां के टेंपल प्रेसिडेंट थे जो गौड़िया मठ के अध्यक्ष थे उनको प्रभुपाद जी ने बोला, वो सुने दीक्षा होने वाली है, तो प्रभुपाद जी ने अनुरोध किया अभय बाबू ने कि मेरी भी थोड़ा निवेदन कीजिए मेरी भी दीक्षा हो जाए, तो उन्हें कहा हाँ मैं अवश्य बताऊंगा। तो जैसा होता है ना कि गुरु आते हैं तो उनको इंट्रोड्यूस किए कि ऐसे ऐसे ये भक्त ऐसे हैं ये भक्त ऐसे हैं, तो प्रभुपाद जी के बारे में बताने लगे, ये अभय बाबू हैं बहुत अच्छे जेंटलमैन हैं बहुत हमें मदद करते हैं गौड़िया मठ में बहुत अच्छे भक्त हैं। तो श्रील भक्ति ठाकुर ने कहा हाँ मैं इनको जानता हूँ, इनको सुनने में बहुत रुचि है, कृष्ण कथा सुनने में बहुत रुचि है। तो सारे भक्त चौंक गए, अरे ये तो नए नए भक्त हैं, भक्ति सिंह ठाकुर कैसे इनको पहचानते हैं, क्योंकि एक बार केवल वो वहाँ पे जो सुने तो इतने ध्यानपूर्वक सुने कि भक्ति सिंह ठाकुर उनको नोट किए कि हाँ ये व्यक्ति बहुत श्रद्धापूर्वक बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हुए कि मेरा जीवन आज सफल हो गया क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे मेरी मैंने पहचान लिए और कह रहे कि मुझे सुनने में बहुत रुचि है। और उसके अगले दिन ही प्रभुपाद जी की दीक्षा हो गई, एक साथ ही हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा। उनका पहले से नाम था अभयचरण और श्रील भक्ति सरण ठाकुर ने वो नाम में अरविंद ऐड कर दिया और क्या उनका नाम हो गया, अभय चरणार विंद। और उसके बाद प्रभुपाद जी और भी सक्रिय हो गए मठ में, इलाहाबाद में भक्तों को प्रचार में मदद करते थे और धीरे धीरे गौड़ीय मठ की वहाँ स्थापना हो गई। आज भी वो गौड़ीय मठ है इलाहाबाद में जहाँ श्री प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई। ये दशावमिश्रमित घाट के पास में है, बहुत सुंदर मठ है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई और उसके बाद प्रभुपाद जी क्या इच्छा थी कि वो बिजनेस द्वारा पैसा व्यापार करके धन अर्जन करें और उसी पैसे से प्रचार करें। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत प्रयास कर रहे थे कैसे वो ज्यादा धन अर्जन करें। इलाहाबाद में कुछ दिक्कतें आ गईं, इतना व्यापार में सफलता नहीं मिला प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी क्या सोचे, मैं बॉम्बे जाऊंगा कि बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है, आज भी इंडिया का क्या है, आर्थिक राजधानी है बॉम्बे। तो प्रभुपाद जी सोचे मैं बॉम्बे जाऊंगा और बॉम्बे में बिजनेस शुरू करूंगा। तो प्रभुपाद जी बॉम्बे गए, वहां भी बिजनेस का प्रयास किए, लेकिन बिजनेस में तो सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर बॉम्बे में क्या हुआ कि वहां भी गौड़ीय मठ के वैष्णव लोग आए थे सेंटर स्थापना करने, तो वो फिर प्रभुपाद जी से मिले। तो प्रभुपाद जी ने वहां भी उनको बहुत मदद किए बॉम्बे में एक सेंटर बनाने के लिए। जो भी प्रभुपाद जी के बिजनेस कॉन्टैक्ट थे या फ्रेंड थे उन सबको वो जैसे होता है ना एक टीम बनाए, प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी और साथ में और दो गौड़ीय वैष्णव के मठ के सन्यासी, तीन लोग मिलके जाते थे। लोग प्रभुपाद जी उनको लेके जाते थे, फिर वो कहते थे ऐसे हम यहाँ मठ बनाने वाले हैं, हमें सहयोग कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सहयोग किया और फिर बॉम्बे में भी मठ गौड़ीय मठ स्थापना हुआ। और उसके उद्घाटन के लिए कौन आए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वयं आए और उनके सामने भी सबने बहुत प्रशंसा की, किसकी, अभय बाबू की, कि ये इतने हमें मदद किए, इतने सक्रिय हैं। शायद एक महाराज जी ने तो ये भी कहा, श्रीधर महाराज ने, कि आप इनको टेम्पल प्रेसिडेंट बना दीजिए, इनको यहाँ का अध्यक्ष बनाइए, हाँ ये हमारे साथ आके क्यों नहीं रहते, क्या करते हैं बिजनेस, हमारे साथ आके रहें फुल टाइम प्रचार करें। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या कहा कि नहीं, अभी उनको छोड़ दो, जब समय आएगा ये स्वयं सब कुछ करेंगे। तो इस प्रकार एक बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया प्रभुपाद जी और भक्ति सरण ठाकुर के बीच में। कई बार उनसे मिले और 1935 में एक बार फिर श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सरण ठाकुर से कहाँ पे मिले, राधा कुंड में। आप सब ये प्रसिद्ध कहानी जानते हैं कि राधा कुंड में उस समय कार्तिक का महीना था और भक्ति सरण ठाकुर आए थे वहाँ कार्तिक के महीने में, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी थे। कौन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। क्यों, क्योंकि इतने प्रयास के बाद वो इतने गौड़ीय मठ की स्थापना किए, बाग बाजार में इतना बड़ा मठ की स्थापना किए, लेकिन उसके बाद अब क्या हो रहा था, आपस में वैष्णव लोग झगड़ रहे थे, उनके जो शिष्य थे सन्यासी थे। तो श्री भक्ति ठाकुर ने कहा कि आगुन ज्वलवे, बहुत जल्दी आग लग जाएगा, बहुत दुखी थे। बोले ये सब क्या, मैं तो चाहता हूँ ये सारे मार्बल को बेच के मैं किताब प्रकाश करूँ। तो उन्हें प्रभुपाद से कहा कि अगर तुम्हें कभी पैसा मिले तो क्या करना, ग्रंथों का प्रकाश करना। तो प्रभुपाद जी ये वाक्य को बहुत गंभीरता से स्वीकार किए और उसके बाद श्रील भक्ति ठाकुर वापस चले गए वहाँ से। और एक साल के अंदर ही 1976 के दिसंबर में वो पुरी में गए और 1 जनवरी 1937 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवत धाम वापस चले गए। और उसके ठीक एक महीने पहले प्रभुपाद जी ने उनको एक चिट्ठी लिखा था कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं तो सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं तो एक पतित गृहस्थ हूँ, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो इसके जवाब में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या लिखा, फिर से वही आदेश दिया जो उनको 1922 में दिए थे कि आप अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का आप प्रचार कीजिए। और ठीक उसके एक महीना के बाद श्रील भक्ति ठाकुर भगवत धाम चले गए। प्रभुपाद जी को अभय चरणारविंद को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो फिर इस आदेश को सोचे मैं पालन करूंगा, यही मेरी गुरु महाराज की इच्छा है। तो प्रभुपाद जी फिर प्रयास करते रहे, क्योंकि उनकी परिवार का जिम्मेदारी था तो व्यापार छोड़े नहीं, बहुत प्रयास करते रहे। लेकिन जहां भी वो प्रयास करते थे वहां क्या हो रहा था, उनको असफलता मिल रही थी। और फिर वो प्रसिद्ध श्लोक भागवतम का याद किए, कौन सा श्लोक है, यस्याहम अनुगृणामी हरिष्य तत् धनम शनै। ये भगवान कृष्ण स्वयं श्लोक कहते हैं कि जिसपे मैं विशेष रूप से कृपा करता हूं। कई बार ऐसा होता है ना, कोई भक्त को बहुत धन मिलता है तो क्या कहते हैं, हाँ भगवान की बहुत कृपा है, मेरे को सब कुछ दिए हैं, बड़ा व्यापार है, बंगलो है, लेकिन वो वास्तविक कृपा नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, जिसमें विशेष रूप से कृपा करता हूं, क्या करता हूं, सब कुछ छीन लेता हूं। यस्यां अनुगृह्णामि हरिष्यत धनम से, उनका धन में हर लेता हूं। तो प्रभुपाद सोचे शायद यही भगवान की विशेष कृपा है मेरे पे, मैं जितना भी प्रयास करता हूं लेकिन असफलता मिल रही है, लेकिन प्रचार के कार्य में प्रयास करते तो सफलता मिल रही थी। जब गौड़ीय वैष्णव उनको हेल्प कर रहे थे तो उसमें बहुत सफल हो रहे थे। तो धीरे धीरे अभय चरणारविंद समझ गए कि नहीं, भगवान नहीं चाहते कि मैं व्यापार करूं मैं मुझे अब। और धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही थी उनकी, 50 साल के हो गए प्रभुपाद जी, तो नहीं अब मुझे पूर्ण रूप से प्रचार कार्य में लगना चाहिए। और फिर वो सबसे पहले प्रयास कहाँ शुरू किए, झांसी में। आप सब जानते हैं लीग ऑफ डिवोटीज प्रारंभ किए प्रभुपाद जी झांसी में 1954 में, और प्रचार का बहुत प्रयास किए, लेकिन उनको सफलता नहीं, थोड़ी सफलता मिली लेकिन फिर समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई, कि जो मकान प्रभुपाद जी ढूंढे थे जहां पे वो लीग ऑफ डिवोटीज प्रारंभ करना चाहते थे, उसको महिला समिति के लिए गवर्नर की वाइफ लेना चाहती थी। तो क्योंकि गवर्नर की वाइफ बहुत शक्तिशाली होते हैं, प्रभुपाद जी उनसे झगड़ नहीं सकते थे, तो प्रभुपाद जी सोचे अच्छा है कि यहां से मैं चला जाऊं, शायद भगवान कृष्ण की यही इच्छा है। तो प्रभुपाद जी फिर झांसी छोड़ के चले गए। बहुत आप पढ़ेंगे लीलामृत ना, आंखों से पानी आ जाएगा, इतना प्रभुपाद जी स्ट्रगल किए, इतना संघर्ष किए। क्योंकि बचपन से प्रभुपाद जी बहुत आराम से रहते थे, उनके पिता उनका अच्छा ध्यान रखते थे, बाद में उनका खुद का व्यापार था, तो कभी खाने के लिए पहनने के लिए प्रभुपाद जी को कभी दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये जो 1955-56 ये जो काल था, प्रभुपाद जी के लिए बहुत कठिनाई का समय था, कोई खाने का ठिकाना नहीं। प्रभुपाद जी फटे हुए धोती कुर्ता पहनते थे और इधर उधर घूमते थे प्रचार करने के लिए, लोगों से मिलते थे, बैक टू गॉडहेड पत्रिका के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, खुद ही लिखते थे और खुद ही उसको छापते थे। एक स्थिति ऐसा आ गया कि बैक टू गॉडहेड भी उन्होंने बंद कर दिया, पैसा ही नहीं था, क्या करें। और प्रभुपाद जी दिल्ली में आए, कुछ समय गौड़ीय मठ में रहे, लेकिन देखिए दुर्भाग्य देखिए या भगवान की योजना देखिए कि गौड़ीय मठ में भी कुछ समय रहे, लेकिन वहाँ के जो सन्यासी थे उस समय, वो कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी इंडायरेक्टली बोले कि आप यहाँ से चले जाइए। तो कुछ महीने के बाद प्रभुपाद जी वहाँ से निकल गए, इधर उधर भटकते रहे, आखिर में प्रभुपाद जी वृंदावन आए 1956 में प्रभुपाद जी वृंदावन आए। और कहाँ पे रुके, वंशी गोपाल जी का मंदिर में जो केशी घाट के पास में। और प्रभुपाद जी वृंदावन किस लिए आए, अधिकतर लोग आते हैं 60 साल की उम्र में वृंदावन किस लिए आते हैं, हम भजन करके आराम करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी इसलिए नहीं आए। प्रभुपाद जी आए ताकि वो प्रेरणा ले, सर गोस्वामी को प्रेरणा ले, भगवान राधा कृष्ण की जो क्रीड़ा भूमि वृंदावन, वहां से प्रभुपाद जी प्रेरणा लेके पूरे विश्व में प्रचार करना चाहते थे, वृंदावन धाम की महिमा को पूरे विश्व में वो प्रचार करना चाहते थे, और इसलिए आए वृंदावन में। तो कुछ समय प्रभुपाद जी वृंदावन में रहे और लिखना प्रारंभ किए, फिर दिल्ली जाते थे, फिर वृंदावन आते थे। इस प्रकार 10 साल तक 1956 से लेकर 1965 तक प्रभुपाद जी का यही स्केड्यूल था। कुछ समय वृंदावन में रहते थे, लिखते थे, श्रीमद् भागवतम का लेख उन्होंने शुरू किया, फिर थोड़ा लिख लेते थे, फिर कहाँ जाते थे, दिल्ली जाते थे, क्योंकि दिल्ली में क्या करते थे, फिर लोगों से डोनेशन इकट्ठा करना और उनको उस किताब को पब्लिश करना। आज सोचिए इस्कॉन में इतने सारे डिपार्टमेंट है ना, BBT अलग है, फंड करेक्शन वाले अलग है, राइटिंग वाले अलग है, लेकिन प्रभुपाद जी वन मैन शो, अकेले सब कुछ करते थे, लिखते थे, दान इकट्ठे करते थे, प्रकाश करते थे और फिर उसको बांटते भी थे। सोचिए वन मैन प्रभुपाद जी, अकेले इस्कॉन उस समय अकेले ही प्रभुपाद जी सब कुछ कर रहे थे। इस प्रकार 10 साल तक प्रभुपाद जी संघर्ष करते रहे, और बहुत संघर्ष के बाद प्रभुपाद जी ने भागवतम की पुस्तक को प्रकाश किया। 3 वॉल्यूम में प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो को लिखा। पहला वॉल्यूम के लिए उनको दान दिया हनुमान भाई जी पोदार, जो गीता प्रेस के भक्त हैं। दूसरे के लिए कोई और एक बिजनेसमैन ने दिया, और तीसरे के लिए दान किसने दिया, मोरारजी, जो सुमति मोरारजी ने। तो और लेकिन प्रभुपाद जी का असली उद्देश्य क्या था, उनको विदेश जाना था, और प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे मैं कैसे न्यूयॉर्क जाऊं, ये उनका उद्देश्य था, मैं कैसे न्यूयॉर्क जाके प्रचार करूं। और ये आप जानते हैं कैसे, वो बहुत कठिनाई के बाद, मैं आपको छोटी सी इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि कैसे प्रभुपाद जी जो मोरारजी देसाई से मिलने गए, तो उनके सेक्रेटरी अलाउ नहीं किए उनसे मिलने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी 5 घंटे तक उनके सीढ़ियों में बैठे रहे। और जब वहां से वो शाम को निकले तो प्रभुपाद जी को देखा, उन्होंने कह रहे ये तो बहुत बुजुर्ग स्वामी है, तो उनके सेक्रेटरी को कहा ठीक है आप इनसे मेरे को मिलवा दीजिए। फिर प्रभुपाद जी उनसे मिले और उनको कन्विंस किए कि मुझे अमेरिका जाने दीजिए आप अपने पानी के जहाज में। तो बोली नहीं आप क्या करेंगे इतने उम्र में अमेरिका जाके, आप मर जाएंगे वहां पे, वहां पे कोई आपकी कथा नहीं सुनेगा, आप भारत में रहिए। प्रभुपाद जी बोले नहीं मुझे जाना है, मेरे गुरु के आदेश को पालन करना है। और फिर मोरारजी देसाई जी ने उन्हें, सुमति मोरारजी ने उनको अपने जहाज में जाने के लिए परमिशन दिया। बहुत कठिनाई के साथ प्रभुपाद जी को वीजा पासपोर्ट इत्यादि जो कागज है उन्होंने प्रभुपाद जी ने प्राप्त किया। और फिर एक मोरारजी देसाई जी एक सेक्रेटरी का नाम था मिस्टर चोकसी, तो मिस्टर चोकसी को सुमति मोरारजी ने कहा था कि आप प्रभुपाद जी की मदद कीजिए। तो चोकसी जी ने प्रभुपाद जी के लिए जो भी बक्सा है, अमेरिका जाएंगे ठंड लगे उनके लिए जैकेट इत्यादि सब उनको खरीदारी करवाए। और फिर प्रभुपाद जी बॉम्बे से कलकत्ता आए, कलकत्ता, क्योंकि वहीं से जलदूत जहाज प्रारंभ होना था। तो चार पांच दिन पहले यानी अगस्त के महीने में प्रभुपाद जी कलकत्ता आए। और सोचिए प्रभुपाद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था, वहीं वो पढ़े लिखे बड़े हुए, शादी हुई उनकी, कितने साल कलकत्ता में थे। लेकिन आज प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे कोई नहीं है कलकत्ता में, क्योंकि सारे रिश्तेदार उनको, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, तो प्रभुपाद जी कहते हैं सारे रिश्तेदारी दोस्त कोई काम में नहीं आते, एवरीथिंग इज ए फ्रूटलेस ग्लोरी प्रभुपाद जी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी सोच सोच के फिर एक कोई एक मिस्टर भट्टाचार्य थे उनके घर में प्रभुपाद जी रुके कुछ दिन, प्रचार किए। और फिर एक दिन पहले श्री प्रभुपाद जी कहाँ पे गए, मायापुर गए, किस लिए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समाधि में वो जाके उनसे आशीर्वाद लिए, क्यों उन्हीं के आदेश पालन करें तो अमेरिका जाना चाहते थे। उनके समाधि में गए, विशेष उनसे कृपा याचना की। और फिर प्रभुपाद जी कलकत्ता लौट आए। और उनके जो मित्र थे मिस्टर भट्टाचार्य, वो उस समय जो न्यूज़पेपर के जो अलग अलग समाचार वाले होते ना उनके पास गए कि आप समाचार निकालिए कैसे एक स्वामी अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन जो पत्रकार है उनको रुचि है नहीं, क्या है कोई बूढ़ा आदमी अमेरिका जा रहा है, इसको क्या न्यूज़ में लिखे, कोई नहीं लिखा न्यूज़ में। केवल एक न्यूज़पेपर था, इसका नाम है इसमें बताते हैं दैनिक बसुमती, वो एक बंगाली जो न्यूज़पेपर है उसमें प्रभुपाद जी का एक छोटा सा लेख आया कि कैसे एक बूढ़े स्वामी जी अमेरिका जा रहे हैं। और उसके अलावा बोले क्या है कोई जा रहा है इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आज हम जानते हैं वो कितना बड़ा ऐतिहासिक एक यात्रा थी प्रभुपाद जी की। कोई नहीं था प्रभुपाद जी को सी ऑफ करने के लिए, केवल उनके मित्र मिश्र भट्टाचार्य थे और कोई भी नहीं था। प्रभुपाद जी अकेले अपने छोटे से बैग को लेके और साथ में कुछ दाल वगैरह या कुछ हल्का सा कुछ भोजन के लिए लेके गए थे कि वहां अमेरिका में कुछ नहीं मिलेगा तो मैं स्वयं इसको पका के खाऊंगा। तो इस प्रकार 13 अगस्त 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए प्रस्थान किए। उस समय कौन जानता था कि वही यात्रा पूरे विश्व के इतिहास में इतनी महान एक इवेंट होगा। और दो दिन पहले ही इसका 50वां जो साल था उसका बहुत भव्य रूप से इसको इस्कॉन द्वारा पालन किया गया था कलकत्ता में। और प्रभुपाद जी के साथ में प्रभुपाद जी एक विशेष ग्रंथ ले गए थे, क्या लेके गए थे, चैतन्य चैतामृत। और फिर आगे आप जानते ही हैं कि कैसे प्रभुपाद जी कितनी कठिनाई है आगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो चैतन्य चैतामृत है उससे उनको बहुत सांत्वना मिली। तो प्रभुपाद जी चैतन्य चैतामृत पढ़ रहे थे और जलदूत में अमेरिका गए। और कितना दिन लगा उनको, करीब करीब 35 दिन लग गए अमेरिका पहुंचने में। रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक आया। और आप जानते हैं अमेरिका पहुंचते उन्होंने क्या लिखा, सबसे पहले एक कविता लिखी, भगवान को प्रार्थना की कि बड़ा कृपा कैले कृष्णा अध मेरे प्रति, हे भगवान आप मुझे यहाँ पे लाए तो हैं, किस लिए लाए मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मुझे कठपुतली की तरह अपने एक निमित्त के रूप में मुझे इस्तेमाल कीजिए और मुझे ऐसी शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने वाणी से इन जो लोग हैं अज्ञान में हैं इनको मैं कुछ आपकी वाणी का प्रचार कर पाऊँ। और फिर आप सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी इतने प्रचार की, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न टिप्पणी है कुछ तो बताइए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।